मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 3 जनवरी 2020 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग नएपन की टेक्निक के बारे में बात कर रहे थे और उसके फर्स्ट पार्ट के रूप में कल मैंने आपसे टेक्निक का जो एक तत्व है, जो एक फैक्टर है, जिसे मैंने वक्त कहा या यूं कह लीजिए कि इत्मीनान कहा, उसके बारे में थोड़ी सी बातें की थी। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप मेरी बातों को थोड़ा व्यवहार में ला सकें, यानी कि प्रैक्टिकली उसको कुछ कर सकें, उसे अपने जीवन में उतार सकें, तो आपको उसके परिणाम दिखाई देंगे। और इनफैक्ट जीवन से संबंधित कोई भी सिद्धांत हो, कोई भी बात की जाए, जब उसके परिणाम मिलने लगते हैं तो हमारा उत्साह कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे आपको बहुत तेज सिर में दर्द है, डॉक्टर ने एक दवाई दे दी, डॉक्टर ने जब दवाई दी, आपने दवाई ली तो सिर का दर्द खत्म हो गया। तो अब जब आप दोबारा उसी डॉक्टर के पास जाएंगे और किसी दूसरी बीमारी के बारे में बताएंगे और वो जब दवाई देगा तो उस दवाई के प्रति आपका विश्वास बढ़ चुका होगा। जब आप वो दवाई लेंगे तो वो दवाई जो असर करेगी वो दूसरों की तुलना में ज़्यादा करेगी। मान लीजिए वही दवाई अगर कोई दूसरा डॉक्टर दे तो शायद वह उतना असर नहीं करेगी जितना इस डॉक्टर के द्वारा दी गई वही दवाई करेगी, क्योंकि इस डॉक्टर की दवाई के साथ आपने अपने विश्वास को शामिल कर लिया है। और मुझे लगता है कि विश्वास सबसे बड़ी दवाई होती है। इसलिए मित्रों, बीच बीच में मैं हमेशा आप लोगों से ये अर्ज करता हूं कि प्लीज़ इसके बारे में कदम उठाइए, इसे अपने व्यवहार में लाइए, तभी सही अर्थों में आप सुन रहे हैं उसका उपयोग है, मैं कह रहा हूं उसका उपयोग है। अदरवाइज तो फिर यूं कह लीजिए कि बस एक हंगामा है। और दुष्यंत कुमार जी के शब्दों में अगर कहना चाहूं तो मैं कहूंगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। तो दोस्तों, अब यह सूरत कैसे बदल सकती है, उसके अब मैं दूसरे तत्व के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसका उल्लेख कल मैंने जानबूझकर नहीं किया था। और मैंने कहा था कि आप सब प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि प्रतीक्षा का भी तो अपना एक सौंदर्य होता है, उसका भी तो अपना एक नयापन होता है। तो आज वह जो दूसरा तत्व है जिसकी बात मैं करने जा रहा हूं मित्रों, वह है दृष्टि। जब मैं यहां दृष्टि की बात कर रहा हूं तो आंख की दृष्टि से ही उसका संबंध नहीं है। आंख की दृष्टि तो है ही, लेकिन मेरा कहने का जो अर्थ है वो कहीं ना कहीं विचारों की दृष्टि से भी है। देखिए, सीधी सी बात है कि जब हम किसी भी वस्तु के संपर्क में आते हैं, हमारा किसी भी वस्तु, घटना, व्यक्ति से जब हमारा साक्षात्कार होता है, तो साक्षात्कार कराने वाला जो पहला तत्व है, जो पहला आधार है, वो हमारी आंखें होती हैं। हम आंखों से देखते हैं और जैसे ही किसी भी वस्तु को हमारी आंखें देखती हैं, देखते ही वह जो भी सोचती, आंखें नहीं सोचती हैं, लेकिन तुरंत वह अपने उस देखे हुए दृश्य को हमारे दिमाग तक पहुंचा देती हैं। और फिर हमारा दृश्य, हमारा जो दिमाग है, उस दृश्य को इंटरप्रेट करता है, उसके बारे में सोचता है। और जिस तरीके से वह सोचता है, आप सच पूछिए तो वह वस्तु हमें उसी तरह की दिखाई देने लगती है। यानी कि यहां जो दिखाई देने वाली जो बात है, देखिए उसके दो भाग हो गए, पहला आंखों को दिखाई दिया और दूसरा दिमाग को दिखाई दिया। हो सकता है कि आंखों को तो वह चीज बड़ी सुंदर लग रही हो लेकिन दिमाग को ना लग रही हो। इसके बारे में मैं एक बहुत ही छोटा सा प्रसंग आपको बताना चाहूंगा। आप जानते हैं कि जब कृष्ण गोपियों को छोड़ करके और चले गए, गोपियों को छोड़ करके वृंदावन से चले गए, तो गोपियां बड़ी दुखी होने लगी। तो कृष्ण ने अपने दोस्त अक्रूर को गोपियों को समझाने के लिए भेजा कि भाई जाओ उन लोगों को समझाओ, इस तरह के दुखी न हो, ये तो जीवन का फलसफा ही है, ऐसा तो होता रहता है। तो अक्रूर जी समझाने के लिए आए इन गोपियों को और समझाने लगे। चलिए हम उस बात पर नहीं जाते। उस समय गोपियां एक बहुत ही संवेदनशील वाक्य कहती हैं, बहुत ही आप यूं कह लीजिए कि नर्म, बहुत ही कोमल बात कहती हैं। देखिए क्या कहती हैं, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। वो क्या कह रहे हैं अक्रूर से कि ये जो लताएं हैं, हरी हरी लताएं जो बिखरी हुई चारों तरफ लिपटी हुई हैं, तब ये लता लगति अति शीतल। तब, तब मतलब कब? जब कृष्ण यहां थे तब तो ये जो लताएं थी ये बड़ी सुकून देने वाली मालूम पड़ती थी। लता लगति अति शीतल, आंखों को बहुत ही ठंडक पहुंचती थी। अब भय विषम ज्वाल की पुंजय, और अब ये तो बहुत ही विषम हो गई, ऐसा लग रहा है जैसे कि इससे तो ज्वाला की लपट निकल रही हो। अब भय विषम ज्वाल, ज्वाला की पुंजय, लपटें उनका गुच्छा, जैसे कि ज्वालाओं का गुच्छा बन गई हो। कल्पना करके देखिए कि क्या लताओं में कुछ ऐसा हुआ है? लताएं वैसी ही हैं, उसी तरह से हरी हैं, बल्कि कुछ और भी खूबसूरत हो गई होंगी, कुछ और भी घनी हो गई होंगी। तो अब ये विषम ज्वाल की पुंजे क्यों हुई? आंखें तो जो देख रही हैं, अगर आंखों को आप एक कैमरा मान लें तो कैमरे से अगर आप फोटो खींचे उसकी और 10 साल पहले खींचे गए उस फोटो से मिलाएंगे तो वो सेम जी दिखाई देंगी। हो सकता है कि अभी की फोटो थोड़ी सी सुंदर भी दिखाई दे, लेकिन वो विषम ज्वाल की पुंजे क्यों हो गई? तो ये विषम ज्वाल की पुंजे उस कर कौन रहा है? आंखें नहीं कर रही हैं, दिमाग कर रहा है, भावनाएं कर रही हैं। इसका मतलब है कि किसी भी चीज को जो हम समझते हैं उसके दो आधार होते हैं। एक आधार सीधे सीधे हमारी आंखें होती हैं और दूसरा आधार होता है हमारा दिमाग। तो चलिए, आंखों की एक सीमा है, डेफिनेटली आंखों की एक सीमा है। अगर आप आंखों को एक भौतिक यंत्र मान लें तो उसकी एक सीमा है। आंखें देख रही हैं, उसका जो दृश्य है वो हमारे मस्तिष्क के पटल पर बन गया है। अब जो इंटरप्रेट करने का काम है, इसकी व्याख्या करने का काम है, वो कौन करेगा? वो दिमाग करेगा। और हमारा दिमाग जैसा होगा वो दृश्य हमें वैसा ही दिखाई देगा। इसलिए मित्रों कहा जाता है कि जैसी है दृष्टि वैसा ही है दृश्य। तो यहां जो दृष्टि है वो दृष्टिकोण से, इसका मतलब है आंखों से मतलब नहीं है। आंखें केवल देखने का काम करती हैं, उसकी व्याख्या करने का काम, उसको महसूस करने का काम हमारा दिमाग करता है। और हमारा दिमाग जैसा होगा, मान करके चलिए कि उस वस्तु का अर्थ हमारे लिए वही होगा। कभी वो हमारे लिए शीतल का कारण, शीतलता का कारण बन सकती है वही वस्तु, और कभी वही वस्तु हमारे लिए विषम ज्वाल की पुंज बन सकती है। तो दोस्तों, जो दूसरा तत्व है वह है दृष्टिकोण। अब मैं दृष्टिकोण पर कुछ बातें करना चाहूंगा, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज अब वक्त इस बात की मुझे अनुमति नहीं दे रहा है कि मैं इस विषय को छेड़ूं, क्योंकि यह विषय थोड़े से लंबे वक्त की मांग करता है। तो चलिए, इस बीच में 2 दिनों का वक्त भी है, इस पर मैं कुछ और भी इस पर विचार करूंगा। आप सब भी अपनी अपनी तरफ से विचार करके अपनी अपनी बातों को नोट कर लीजिए और फिर जो मेरे विचार होंगे उनसे मैच कीजिएगा तो शायद आपको इसमें और भी अधिक मजा आएगा। तो मित्रों, जैसा कि मैंने कहा, आज शुक्रवार है, 2 दिनों के बाद अब आप सबसे फिर मुलाकात होगी और तब फिर इसी विषय पर हम लोग आगे बात करेंगे। तब तक के लिए मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें, मुझे इजाजत भी दे रहे। नमस्कार।